صلّي على رسولك. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وأخوات. اسلام کے ابتدائی زمانہ ہے، خلافت راشدہ کے بعد، تو اس میں بڑے بڑے جید عالم اور اولیاء کرام پیدا ہوئے. علم کے لحاظ سے ایک صاحب جو جنہوں نے بہت نام کمایا وہ محی الدین محمد ابن عربی تھے. یہ انتہائی جینیس آدمی گزرے ہیں اپنے وقت میں، لیکن ان کا ایک مسئلہ یہ رہا کہ انہوں نے اپنے وقت سے 1200-1400 سال قبل باتیں کر دی، وہ باتیں جو آج سے بھی 100 سال بعد یا 50 سال بعد ہونی چاہیے تھیں، وہ انہوں نے اپنے زمانے میں باتیں کہہ دیں. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ عالم ہیں. ہم ان کی کہی بھی باتوں کو آج بھی نہیں سمجھ پاتے پوری طرح. یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ بہت وائڈلی مس انڈرسٹوڈ ان کی تھیوری رہی، اور ہمارے یہاں چونکہ یہ چیز بڑی عام ہے کہ ہم کسی چیز کو پرسنلی دیکھے بغیر، پرسنلی پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، صرف سنی سنائی بات سے آگے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات بجائے بننے کے بگڑتی چلی جاتی ہے. تو اس مسئلے کے ساتھ یہی کچھ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان بہت سخت اختلاف پیدا ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں خون بہہ گیا بہت سے مسلمانوں کا. حالانکہ ان کے جو مسئلے کا لب لباب ہے اس کو ہم دو سینٹنس میں، ہم اسے ہر آدمی دہراتا ہے، وہ بزرگ جن کے تو ہی تو ہے میں نہیں، یہ ایک چیز ہم میں سے ہر کوئی دہراتا ہے. اسی طرح رب تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہی اول تو ہی آخر. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہی اول تو ہی آخر، کہ یہ دونوں اسماء حسنہ میں سے نام ہیں اللہ تعالی کے، تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے कि एक लफ्जी मायनों में इस पर बात हुई थी कि किसी साहब ने एक सवाल मुझसे पूछा था यूरोप में कि वाहिद और आहद इसके मायने एक ही हैं, लेकिन ये दो अलहदा क्यों हम बोलते हैं, तो इनमें फर्क क्या है जबकि मायने एक ही हैं वाहिद और आहद। तो यहां मैंने जिक्र किया था कि अगर हम गिनती गिने तो एक को हम वाहिद कहते हैं, अरबी में वाहिद का मतलब एक है, तो वो नंबर के हिसाब से वो एक है, दो नहीं है। लेकिन इस्तलाही मायनों में जब हम कहते हैं कि आहद है, तो इस्तलाही मायनों में हम कहते हैं कि वो लासानी है, यूनिक है, उसका कोई सानी नहीं है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो वो हम उसको उन मायनों में आहत कहते हैं। तो ऐसे ही हम उसको अव्वल कहते हैं और आखिर कहते हैं। अव्वल ज़ाहिरी मायनों में आता है कि तमाम चीज़ें उसी से शुरू हुई हैं, वही इब्तदा करने वाला है इस कायनात की, कि कुन कहा और कायनात वजूद में आ गई, तो वो सबसे पहले मौजूद था, वो अव्वल है। और इस्तलाही मायनों में जब हम कहते हैं आखिर है कि वो उसी पर इंतहा है हर चीज की, वहीं से चीज शुरू होती है, वहीं जाके खत्म हो जाती है, तो वो उन इस्तलाही मायनों में आता है। इसी तरह हम यहां पिछली नशिस्त में अल्लाह ताला के एक नाम बातिन का हमने जिक्र किया था, जाहिर और बातिन, तो अपने आसार के लिहाज से वो जाहिर है, और अपने असल मायनों के लिहाज से वो बातिन, तो वो जाहिर भी है वो बातिन भी है। ये जो मायने का फर्क बारीक सा है, यहां आके असल दिक्कत हमारे लिए पैदा होती है कि अगर एक साहब इल्म के इंतहाई बुलंद मकाम पर बैठे हैं, तो जब वो बात करेंगे कोई, तो शायद उनके जहन में ये होता होगा कि ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो तो सभी जानते हैं, तो उसको बयान करने की जरूरत क्या है, तो वो एक मुख्तसरन बात कह देते हैं। जैसे एक लफ्ज पैगंबर है, इसका मायना है पैगाम लाने वाला। अब ये लुगती मायने हैं उसके कि हर वो आदमी जो पयाम लेकर आता है उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन उर्फी मायनों में जो मारूफ मायने हैं इसके, उसका मतलब तो रब ताला का भेजा हुआ पैगंबर है। तो नतीजा ये हो जाएगा कि اگر کسی نے غلطی سے یہ لفظ استعمال کر لیا اور اس کو پڑھنے والا میرے جیسا ہوا جس کا علم کا مقام بلند نہیں ہے, تو وہ تو جھگڑے کی بنیاد بن جائے گا. اور ایک بار اگر میں نے شوشہ چھوڑ دیا تو پھر ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو لے کے آگے دوڑ پڑے گا بغیر اس کو تحقیق کیے, بغیر کچھ دیکھے. تو محمد ابن عربی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا کہ انہوں نے علم کے جس مقام پر بیٹھ کر لکھا اس میں کہیں تو انہوں نے اس کو الفاظ کو اعتبار کے لحاظ سے اس کے اعتباری معنی لے لیے اور اس کو استعمال کر ڈالے. اب پڑھنے والے کا علم وہ نہیں ہے کہ وہاں تک جا پہنچے, تو اس کو مس انڈرسٹینڈ کر لیا گیا. کہیں انہوں نے جو الفاظ اپنے صرف عرفی معنوں میں, معروف سینس میں جو معنی لیے جاتے ہیں, صرف انہی میں استعمال ہو رہے ہیں, انہوں نے اس کو لغتی معنوں میں اسے استعمال کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مس انڈرسٹینڈ کر گئی بات. ورنہ اگر ان کی ان چیزوں کو ہم سامنے رکھ لیں اپنے ذہن میں, جب ان کے پیغام کو پڑھ رہے ہوں, ان کی تحریروں کو پڑھ رہے ہوں, اور یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھ لیں کہ انہوں نے اپنی جو تحریریں ہیں, جو سوچ اپنی لوگوں تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں کیا ترکیب استعمال کر لی ہے, تو پھر ان کے میسج کو جب ہم پڑھتے ہیں, ان کی تحریر کو پڑھتے ہیں, تو پتہ ہی چلتا ہے کہ محمد ابن عربی صاحب نے کیا خوبصورت باتیں کہی ہیں. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں کھلے ذہن کا ہو کے اور ان کی تحریر کی اس ترکیب کو سامنے رکھ کے پڑھنا ہوگا. ادروائز ہم پھر یہ کہیں گے کہ یہ تو غلط لکھا ہے انہوں نے, میں الفاظ ذرا پولائٹ یوز کر رہا ہوں کہ غلط لکھا. ادروائز ہم لوگ تو عادی نہیں ہیں پولائٹ ورڈز یوز کرنے کے. تو جب ہم اس کو دیکھیں گے, یہ سب ذہن میں رکھ کے, کہ محمد ابن عربی نے وہ الفاظ سے کھیلا ہے, انہوں نے کہیں لغتی معنوں میں لے گئے اس کو, کہیں معروف معنوں میں لے گئے, اصطلاحی معنوں میں لے گئے, کہیں اعتباریت کے حساب سے لے گئے. اب ایک صاحب نے ان کے کلام کے بارے میں, ان کی تحریر کے بارے میں بڑا خوبصورت ایک ایگزامپل کوٹ کی, تو کہا کہ الفاظ کس طرح سے اپنے مقام پر جا کے اپنے معنی خود بدل لیتے ہیں. تو انہوں نے ایگزامپل دی کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں صاحب نے میرے ساتھ خباثت دکھائی ہے, اب میں بھی خباثت دکھاؤں گا. اب دیکھیے, ان دونوں الفاظ لفظ ایک ہی استعمال ہوا, لیکن فورس کیسے ٹوٹتی ہے کہ سینٹنس کے پہلے حصے میں بہت فورسفل ورڈ ہے وہ, کہ اس نے میرے ساتھ خباثت دکھائی ہے اور میں بھی اس کو ویسی ہی خباثت دکھاؤں گا. یہاں اس کی فورس نہیں رہ گئی, وہ الفاظ نرم ہو گئے اس نے. ابن عربی کو پڑھیے, لیکن ان کو پڑھتے وقت ذہن میں یہ چیزیں رکھیے کہ وہ علم کے انتہائی بلند مقام پر تھے جب انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں. تو اس میں جو ترکیب استعمال ہوئی ہے وہ اس سے ہم لوگ زیادہ مانوس نہیں ہیں اس ترکیب سے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کو بہت سے لوگ روحانیت سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو آ کے یہی کمپلینٹ کرتے دکھائی دیں گے کہ صاحب وہ سمجھ میں آتی نہیں کہ لکھا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر جناب حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کتابیں ہم دیکھ لیں, اب انہوں نے اپنے مقام پر بیٹھ کے لکھی کتاب. انہوں نے ساری عمر درس دیا ہے علماء کو جو پہلے سے ہی علم کے ایک بڑے مقام پر بیٹھے ہیں, ان کی تعلیم و تربیت کی ہے جناب حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے ہیں. انہوں نے کتابیں لکھی تو اسی سطح پر بیٹھ کے لکھ دی. اب اس کو جو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا. اسی طرح کشف المحجوب بڑی آسان کتاب ہے جناب دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی لکھی, اس کے ترجمے ہوئے ہیں. اب کچھ ترجمے ایسے ہیں جن کو اگر ہم پڑھنے بیٹھیں گے تو ہماری سمجھ میں آتا ہی کچھ نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ لکھا ہوا کیا ہے. لیکن ایک آدھ ترجمہ ایسا بھی ملے گا جس کو آپ پڑھتے ہیں تو ہر چیز بالکل آسان اور بڑی واضح دکھائی دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ترجمہ کیا ہے کسی نے, یا تو علم کے بہت بڑے مقام پر بیٹھا تھا وہ آدمی اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کتاب کو ایک عام آدمی نے پڑھنا ہے تو اس کی علمی سطح وہ نہیں ہے, تو اس نے اس عام آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق ترجمہ کر ڈالا جو سمجھ میں آ جاتا ہے. شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے آسان زبان لکھنا. جب ہم بات کرتے ہیں یا کوئی چیز تحریر کرتے ہیں ہم, تو یہ بہت بڑا آرٹ ہے کہ ہم اس کو روزمرہ کی زبان میں بیان کر دیں یا روزمرہ کی زبان میں لکھ دیں. یہ گرفت اور یہ کمانڈ اسی وقت آدمی میں پیدا ہوتی ہے جب علم کے ایک بڑے مقام پر جا کے بیٹھ جاتا ہے, وہ کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ علماء کے ساتھ جب وہ بات کرے تو علماء کی زبان میں کرے, جب ایک عام آدمی کے ساتھ گفتگو کرے تو وہ ان کی علمی سطح کے مطابق نیچے آ کے پھر بات کر لے. یہ آرٹ ہے. اسی طرح ٹو دا پوائنٹ بات کرنا یہ بھی ایک بڑا فن ہے کہ آپ اپنا مدعا کم سے کم لفظوں میں بیان کر دیں. یہ ایک فن ہے. نائنٹین سیونٹی میں میں جاب کر رہا تھا تو ہمارے جو باس تھے, میں ٹور پر فیصل آباد جا رہا تھا, ہمارے باس صحیح معنوں میں نواب خاندان سے تھے اور خود بھی ان کے طور طریقے چال ڈھال پرسنالٹی ساری کی ساری صرف ایک بار دیکھنے سے پتہ لگتا تھا کہ یہ ریئل نواب ہیں. وہ مجھے کہنے لگے کہ سرفراز صاحب چلیے میں آج آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں. گئے تو جہاں بھی ہم نے جو کام کرنا تھا وہ میں کرتا رہا. मेरा ख्याल था कि वो चूंकि बहुत सीनियर है मुझसे तो वो गुफ्तगू करेंगे या वो बयान करेंगे मामलात, तो मैं बैठ के सिर्फ देखूंगा। लेकिन हैरत ये हुई कि जब हम ऑफिस में जहाँ गए थे वहाँ दाखिल हो रहे थे तो मुझे कहने लगे, सरफराज साहब आप इस इलाके के इंचार्ज हैं, तो यहाँ आप बॉस हैं, मैं नहीं, तो आप मामलात को हैंडल करेंगे, मैं दखल नहीं दूंगा। तो थैंक यू सो मच सर। तो मैं गुफ्तगू करता रहा वहां, तो हम उससे फारिग हो के मीटिंग से वापस आ रहे थे। ये 1970 का किस्सा है। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात मुझसे कही, कहिए सरफराज साहब आप अपने काम में माहिर हैं, बहुत अच्छे हैं। और माइंड इट, उस वक्त मैं तकरीबन 25 साल के करीब उम्र थी, 25 साल ऐसी। लेकिन आप में एक बड़ी खराबी है। तो मैं सुनता रहा चुपचाप। कहने लगे, जब आप दूसरे से बात करते हैं तो उसको जाहिल समझते हैं कि उसको कुछ पता नहीं है, तो आप इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन उसको देते हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं वो बहुत सीनियर आदमी है, तो आपको ये यकीन रखना चाहिए कि उसके पास आपसे ज्यादा इल्म है, क्योंकि वो उम्र में भी बहुत बड़ा है आपसे और वैसे भी सीनियर पोजिशन पर है। तो आप एक्सप्लेनेशन मत दिया कीजिए, सिर्फ बात किया कीजिए। ये सुनने के बाद फिर मैंने अपने आप को एग्जामिन किया तो पता चला कि वाकई मैं ये तो नहीं, शौरी तौर पर नहीं समझता कि उसे कुछ आता नहीं है, लेकिन कहीं लाशौर में समवेयर एट द बैक ऑफ माय माइंड ये गालबन है कि मैं इसको वाजे कर दूं बात को, शायद वो ना समझ सके मेरी बात। तो रफ्ता रफ्ता उस चीज को मैं कंट्रोल कर लिया। तो होता यह है कि जब आदमी के पास इल्म नहीं होता तो बड़ी लंबी बात करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसके पास इल्म एक बड़ी मकदार में आ जाता है, वाकई कुछ जानने लगता है चीजों को, तो वो फिर मुख्तसर और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करता है। उस आदमी की कोशिश ये होती है कि मैं एक आध जुमले में ही अपनी बात मुकम्मल कर लूं, ज्यादा बोलना ना पड़े मुझे। इसी तरह जब लिखता है खत, वो मैं ऑफिस के सिलसिले में गया हुआ था टूर पर, तो इंग्लैंड में एक साहब ने मुझे ढूंढा तो कहने लगे, सर मैं सुबह से ढूंढ रहा था आपको, खैरियत है, क्या हो गया आपको? कहने लगे, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए। तो और अर्जेंट है, फरमाएं क्या हो गया? तो कहने लगे, आपके लिए पाकिस्तान से एक कॉल आई थी और ये नंबर छोड़ा उन्होंने कि बड़ा अर्जेंटली आप बात कर लीजिए। ठीक है, तो टेलीफोन लेके मैंने कॉल बैक किया फौरन। तो वहां से मुझे कहा ये गया, इंतहाई आला मकाम फायज हस्ती के हवाले से, कि उनका आपके लिए मैसेज ये है कि इमाम मेहदी का जहूर हो गया, आप जाके उनसे मिल लीजिए। अब वो मैसेज सुनते ही अंदर से आवाज तो एक आ गई कि मैसेज, ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन चूंकि हवाला ऐसी हस्ती का दे दिया गया था तो ये समझते हुए भी कि गलत है, तो मैंने चेक किया कौन सी फ्लाइट अवेलेबल है इमीडिएटली, तो मैं यहाँ आ गया। दो तीन दिन के इंतज़ार के बाद उन साहब का एड्रेस मुझे मिल गया, वहाँ गया उनसे मिला, और लंबी कहानी लंबी। तो उन्होंने कहा मैंने एक ख़त फलां आदमी को लिखा था, उसका जवाब नहीं आया, आप उनसे कहिए मुझे जवाब तो दे दें। तो मैंने उनसे कहा जनाब मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ, इतने बड़े लोगों से मेरा क्या वास्ता है। तो मैं कहा कि नहीं आपको वो जानते हैं, तो मैंने कहा नहीं इतने बड़े लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें ज़रूर जानता हूँ अखबारों के ज़रिए से और टेलीविज़न के ज़रिए से। तो वो ज़िद कर रहे थे, तो ज़िद करते करते एक जगह शायद जाके मैं ज़हनी तौर पे वियर आउट हो गया। तो मैंने कहा जिस ख़त का आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं देते हैं, वो आपने 7 सफ़ों का लेटर लिखा है उनको, उनमें से 5 सफ़े आपकी अपनी ज़ात के बारे में हैं और 2, तो इस मकाम के आदमी को जब आदमी ख़त लिखता है तो हमें तो यही ट्रेन किया गया था कि हमारा लेटर ज़्यादा 1 सतर या 1.5 सतर होना चाहिए, इससे ज़्यादा न लिखें वरना वो रद्दी की टोकरी में चला जाएगा, कि इस इतनी सीनियर पोजीशन पे बैठ के आदमी के पास टाइम नहीं होता कि उसे पढ़ सके। तो फौरन वो फरमाने लगे कि अच्छा आप ऐसा करें मेरे लिए दुआ भी करें और ये ख़त मैं दे देता हूँ, इसको आप मुख्तसर करके जैसे आप कह रहे हैं खुद लिख लाइए, मैं साइन करके भेज दूंगा। मैंने ठीक है जनाब। वो ख़त लाया, मैं मुख्तसर करने के नियत से उसे पढ़ना चाह रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात लिखी थी जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मैंने उसे आग लगवा दी कि इसको जला दो। ये वो किस्सा ये है कि अब वो 7 पेजेस का लेटर जो फुल स्केप कागज, वो 7 थे, हालांकि उसको 1 सतर में लिखा जा सकता था बजाय 7 फुल स्केप पेपर्स भरने के। लेकिन वो फन है पूरा, और वो उसी वक्त आएगा जब हमारा इल्म बहुत हो जाए हमारे पास, उसके बगैर नहीं आता हूं। तो अब ये बात मालूम नहीं किधर से किधर चली गई। बात मोहम्मद इब्ने अरबी से शुरू हुई थी और ये इनका एक ही सवाल बाकी रह गया था, वो ये था कि प्लीज एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन अल्लाह नेम, हाउ कैन वी कंटेम्पलेट ऑन अल्लाह नेम्स एंड हाउ दिस कुड हेल्प इन आवर लाइफ इन गेनिंग अल्लाह मर्सी एंड ग्रेस। रब ताला के अस्माए हुस्ना उनके अपने अपने असरात हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला के जो सिफाती अस्माए मुबारक हैं, अगर उनको बतौर वजीफे के अगर हम पढ़ें, वजीफा इस सेंस में कि बाकायदगी से एक वक्त पर एक मखसूस तादाद में जिस चीज को पढ़ा जाए वो वजीफा कहलाता है, वैसे तो हमारी उर्दू जुबान में ये वजीफा लफ्ज इस्तेमाल होता है, وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ چیز جو باقاعدگی کے ساتھ کی جائے وہ وظیفہ ہے. اور اس سے کئی ایک محاورے بھی ہیں اس کے بنے ہوئے لفظ کے, کہ جیسے اس نے تو اس چیز کا وظیفہ ہی بنا لیا ہے, یہ محاورتن استعمال ہوتا ہے. لیکن روحانیت کی ٹرمنالوجی میں وظیفہ اس چیز کو کہا جائے گا جس کو باقاعدگی کے ساتھ ایک مخصوص وقت پر مخصوص تعداد میں پڑھا جائے, وہ وظیفہ کہلائے گا. تو جب ہم اسماء حسنہ میں سے کسی ایک نام مبارک کو کا ورد کرتے ہیں تو اس کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں انسان. اس میں صرف ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے, جو اسماء مبارک کے لغتی معنی ہیں, کسی ایک لفظ کو لے لیجئے, جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے قہارو, القہارو. اب لفظ قہار جو ہے اس کے معنی تو بنیں گے غضب والا, لیکن عام طور پر جو درویش لوگ ہیں, فقیر لوگ ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے کہی ہوئی بات پوری ہو جائے, وہ یا قہار ہو یا جبار ہو اس کا وظیفہ کرتے ہیں. اب یہ دونوں اثرات اگر ہم اس کے لغتی معنی دیکھیں اور اثرات کو دیکھیں تو یہ مختلف بنتے ہیں. اسی طرح رب تعالیٰ کے اور اسماء مبارک, اسماء حسنہ اگر ہم ورد کریں گے بطور وظیفہ, تو کبھی اس کے لغتی معنی دیکھ کے نہ کیجیے گا, کیونکہ اس کے اثرات لغتی معنوں والے نہیں ہوں گے. جیسے صمد اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا, اور بہت ہی تیزی ہے اس میں, بہت سریع الاثر گنا جاتا ہے, اسے سمجھا جاتا ہے. اب اگر اس کو پڑھا جائے گا تو یہ بے نیازی کی صفت اتنی تیزی سے لاتا ہے انسان کے لیے کہ وہ رفتہ رفتہ یہاں تک چلا جاتا ہے کہ کپڑوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ایک اور لفظ ہم پڑھتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یہ خیال ہے کہ اس کو پڑھنے سے رزق بہت آتا ہے, الغنی اور المغنی. یہ انسان کو دنیاوی مال و زر سے بے پرواہ کر دیتا ہے. تو جو چار پیسے آ رہے تھے وہ بھی جاتے رہتے ہیں, لیکن رب کی طرف راغب ہو جاتا بڑی شدت کے ساتھ. اور توکل اصل میں ہمارے یہاں اردو میں غنا جس سے جو سمجھا جاتا ہے, یا غنی سے جو مراد لی جاتی ہے, وہ اس میں ہے کہ آدمی امیر ہے اور وہ لوگوں کو دیتا ہے. سخی کے معنوں میں لے لیجئے لفظ, اس کو یوں سمجھ لیجئے. لیکن یہ اسماء حسنہ میں جو یہ اسم ہے, یہ اس معنی میں آئے گا کہ دنیاوی مال و زر سے بالکل بے پرواہ ہو گیا بندہ. تو آدمی دل کا غنی ہو جائے گا بہت, لیکن دنیاوی مال و زر کی فکر نہیں رہے گی اسے, تو دونوں ہاتھ سے لوٹاتا رہے گا. वो अगर एक इंसान दुनियावी जिंदगी भी भरपूर गुजार रहा है तो अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए उसे वसाइल की जरूरत रहती है। हमें ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि इसके असरात क्या होंगे, उसके सही असरात कोई फकीर ही बता पाएगा आपको। जहां तक कंटेम्पलेट करने की बात है, ये सिर्फ अस्माए हुस्ना के विर्द की बात नहीं है। हम रब ताला को किसी भी लफ्ज से पुकारें, कोई सा भी जिक्र हम करें, कोई सा भी विर्द हम करें, तो उस पर कंसंट्रेशन बड़ी लाजिम है कि हम उसमें डूब कर उसका जिक्र करें। जब तक के हम उसमें डूब कर उसका जिक्र नहीं करेंगे, उसके असरात नमूदार नहीं होते। नमाज में भी अगर हमारी तो जो बहुत ना रहे तो उसका हल ये है कि हम इस तरह से नमाज पढ़ें कि जो हमारी बुड़बुड़ाहट है वो हमें सुनाई दे जाए। तो हम बुड़बुड़ाहट की सूरत में जैसे सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं तो हम बुड़बुड़ाहट की सूरत में उसे पढ़ें और उसको खुद सुनने की कोशिश करें। जब हम खुद अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एकदम। फिर वो जो ख्यालात आते हैं जहन में या तो जो हमारी बढ़ती है वो खत्म हो जाएगी। तो पूरी कुव्वत से, पूरे इनहमाक से हम अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करें। इससे जब हम कुरान पाक की तलावत करते हैं तो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं लेकिन या तो बाहर कोई चीज गिरी तो उधर तो जो चली गई, कुछ दो लोग बोले उधर तो जो चली गई, तो कुरान से हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन तो जो नहीं रहती कुरान में। ये बाज का ये चीज वैसे फायदा भी दे जाती है। तो एक साहब बैठे हुए तस्बीह पढ़ रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तो उनके घर की दीवार के बाहर खिड़की से आवाज उनको आई। दो खवातीन आपस में बात कर रही थी कि आज तुमने कितने पैसे कमाए। तो औरत ने जवाब दिया कि मैंने इतने पैसे कमाए। तो दूसरी औरत ने पूछा तो कहाँ खर्च कर दिए। तो उसने तफसील बता दी कि फला जगह इतने इतने इतने। वो औरत दूसरी फौरन बोली कि तुमने बाकी चीजें बता दी, ये नहीं बताया कि तुमने अपने दोस्त को इतने पैसे दिए। वो लफ्ज उन्होंने कुछ और इस्तेमाल किया, मैं जरा उसको थोड़ा किसी और लफ्ज से रिप्लेस कर रहा हूं कि तुमने अपने दोस्त को दिए। तो उस औरत ने फौरन जवाब दिया पर्शियन में कि हाँ मैंने दिए लेकिन हिसाब दोस्तान दर दिल, कि दोस्तों के साथ हिसाब किताब दिलों में होता है, वो कागज पर या कैलकुलेटर पर नहीं होता कि तुमने इतने दिए मैंने इतने दिए, इतना तुम्हारी तरफ ड्यू हो गया तुम्हारा मेरी तरफ इतना ड्यू हो गया। तो वो उसने उसको पर्शियन में जवाब दे दिया कि हिसाब दोस्तान दर दिल। तो ये जो बुजुर्ग तस्बीह कर रहे थे इनकी तवज्जो बाहर लग गई थी खवातीन की आवाज की तरफ, तो फौरन उठे और अपनी तस्बीह एक तरफ फेंक दी। तो कहने लगे हिसाब दोस्तां दर दिल ना के दर तस्बीह, रब का रब मेरा दोस्त है, मैं उसका जिक्र गिनकर क्यों करूं, वो तो दिलों में हिसाब रहेगा। तो एक फायदा हो गया कि वो एक अच्छी राह पे लग गया कि रब को बगैर गिने पुकारेगा वो। तो बाज़ औक़ात कहीं कहीं ऐसा फायदा भी हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ जी, ये मोहम्मद इब्ने अरबी की बहुत सी तसानीफ हैं, में 13-14 तो वो तसानीफ हैं जो मारूफ हैं, लोगों को मालूम है। लेकिन इसके अलावा बहुत सा उनका वक्स ज़ाया हो गया, जमाने की नज़र हो गया है। उनमें से भी शायद दो या तीन किताबें हैं जिसका उर्दू में तर्जुमा हो सका है। तो उसमें फसूसुल हुक्म बहुत मशहूर हुई है किताब, फतुहात मक्किया, ये किताब चूंकि इनके उर्दू में तर्जुमे हुए हैं ये अवेलेबल हो जाती हैं, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो उनके इल्म की एक आध बात का तो वो एक आध बात नहीं है जिसका जिक्र किया जा सके, वो तो एक खजाना है इल्म का, बशर्ते कि हम उसको इस अंदाज में पढ़ सकें जिस अंदाज में वो लिखा गया है, कि उनको हम रियायत देनी पड़ेगी, अलाउंस देना पड़ेगा हमें कि शायद उन्होंने उसके ये लघवी मायने इस्तेमाल कर लिए हैं, उर्फी मायने इस्तेमाल कर लिए हैं, या एतबारी लिहाज से उसे इस्तेमाल कर गए हैं लफ्ज को। तो उसको फिर हम जब इस अंदाज में देखेंगे तो उनकी उनका इल्म कुछ ना कुछ वहां से हम पिक कर सकेंगे। तो ये बात हो रही थी कंसंट्रेशन की। तो ये सिर्फ अस्माए हुस्ना के जिक्र तक ही मौजूद नहीं है, बल्कि जब भी हम रब को पुकारें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें या रब को पुकारें, उसमें कंसंट्रेशन एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। और ये जो इनके सवाल का हिस्सा है, एंड हाउ दिस कुड हेल्प इन आवर लाइफ इन गेनिंग अल्लाह मर्सी एंड ग्रेस, एक बड़ी सिंपल सीधी बात है कि जो रब ने खुद फरमा दिया कि मेरे जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके अंदर का सुकून है, और उसकी जो ट्रू हैप्पीनेस है वो सबसे बड़ी दौलत है। तो जब हम अपने रब को खलूस दिल से अखलास के साथ पुकारते हैं तो हमें फिर ज़हनी सुकून मिलता है, एक अंदर हमारे एक अजीब सी खुशी भरी रहती है हर वक्त। तो आदमी का भरोसा इतना बढ़ जाता है रब पर कि हालात का कुछ ही क्यों ना हो वो शख्स आपको हंसता खेलता ही मिलेगा, इंतहाई बदतरीन हालात में भी वो कह के लगा रहा होता है बंदा। ये असल में अपने रब पर भरोसे का इनाम है उसको, कि वो किसी तौर की मानने को तैयार ही नहीं कि मेरा रब मुझे बेसहारा छोड़ देगा, उसको वो खुशी मिलती है। वैसे तो जो खुशी है, कल शायद किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने ये अर्ज की थी उसकी खिदमत में कि खुशी सिर्फ देने से मिलती है, और वो देना जो है वो सिर्फ माली चीज़ों का नहीं, माली लिहाज से नहीं है, बल्कि जब हम किसी से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं तो हम दूसरे को एक एहसास दे रहे हैं जो प्लेजेंट एहसास है। जब हम किसी की सख्त बात के जवाब में नर्म बात कहते हैं तो ये भी हम उसको दे रहे होते हैं। जब अपनी जरूरत रोक कर हम किसी के काम आ रहे होते हैं और इस अंदाज में कि हम उस आदमी को यह एहसास नहीं होने देते कि तुम्हारी खातिर मैंने अपनी एक जरूरत कुर्बान कर दी, तो भी हम उसको दे रहे होते हैं। तो ये देना एक बहुत ब्रॉडर सेंस में मैं बात कर रहा हूं। तो जब हम दूसरों को देने के आदी हो जाते हैं तो फिर हमारे अंदर वो एक ट्रू हैप्पीनेस जिसको हम कहते हैं वो पैदा होती है। इसीलिए आप जब किसी फकीर के पास जाते हैं तो कभी फकीर को नोट कीजिए कि खा वो कई रोज के फाके से बैठा हुआ हो, बड़ी खुश मजाजी से आपसे मिलेगा, उसमें एक अजीब आपको प्लेजेंट में एहसास होता है कि बहुत प्लेजेंट आदमी है। वो उसका नतीजा है कि उसको अपने रब पे बहुत भरोसा है, तो मायूसी उसके करीब से भी नहीं गुजर रही, इसलिए उसका मूड कभी ऑफ नहीं होता। तो इसके साथ ही अगली इतवार तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।